السلام علیکم ویورز، نیلم ریاست کے ناول آنچل میں جلتا دیا کا لاسٹ پارٹ تو میں شروع کرتی ہوں۔ کون؟ بی بی جی میں ہوں، ملازمہ کی آواز پہ اس نے اجازت دی۔ اندر آ جاؤ، کیا بات ہے؟ ملازمہ اندر آئی اور اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، کہہ رہی ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، اس وقت بس نیند آ رہی ہے۔ وہ آپ کا سر درد اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے پیناڈول لے لی تھی، اب کافی فرق ہے۔ ٹھیک ہے بی بی جی، میں چلتی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو بزر بجا دیجئے گا۔ اور ہاں، فائز بھائی کا فون آیا تھا، وہ اور صاحب جی کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، صاحب جی آج رات کو دیر سے گھر آئیں گے۔ زشمہ کی بے اختیار نظر کلاک پر پڑی جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ دل میں سوچا دوسری تاریخ شروع ہو گئی، اس سے زیادہ دیر کیا ہوگی۔ ممی کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر شب بخیر بول دینا، اللہ حافظ۔ ملازمہ چلی گئی، اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف ڈالی۔ ڈنر اس نے ممی کے ساتھ ہی کیا تھا، یہ ظاہر کروائے بغیر کہ دل پہ کیا بیتی تھی۔ ممی یہی سمجھی تھی کہ وہ خازن کے آفس چلے جانے کے بعد ہی پہنچی ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اس وقت دل زیادہ دکھا جب وہ اپنے بیٹے کی جانب سے زشمہ سے ملنے کے اشتیاق کو جتا رہی تھی، وہ چاہ کر بھی نہ کہہ پائی۔ مت جھوٹ بولے، زخموں پہ نمک کی طرح لگ رہا ہے۔ شب خوابی کا لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے نکلی تھی جب فون کی ٹون نے متوجہ کیا۔ پہلا خیال یہی آیا میکے سے کسی کا میسج ہے، مگر صاحب نے حازن کا نام دیکھ کر تجسس ہوا، آخر کیا کہنے کو میسج کیا ہے؟ جلدی سے پڑھنے لگی، شوہر اگر غصے میں کچھ غلط سلط بول جائے تو اچھی بیوی کو دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ زشمہ کا جی چاہا کاش اس وقت وہ سامنے ہوتا تو یہی فون اس کے سر پہ دے مارتی۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس ایپ بند کر کے فون واپس رکھ دیا، جبکہ دوسری جانب وہ ابھی بھی آن لائن تھا۔ پورے ایک منٹ بعد ٹون دوبارہ بجی، اس کے بال برش کرتے ہاتھ تھمے، جلدی سے آ کر ایک دفعہ پھر میسج کھول کر پڑھنے لگی، میں بہت زیادہ پریشان تھا، ایپ بند کی اور بال کنگھی کرنے لگی۔ ایک منٹ گزرا، ٹون بجی، کیا ہوا جو ہر دو پل بعد تمہیں فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بڑا یاد کرتا ہوں، تمہارے بغیر دنیا اداس لگتی ہے۔ اتنی صفائیاں آج تک اپنی ماں کو بھی نہیں دی ہیں۔ اگلے 10-15 منٹ تک یہی عمل جاری رہا، وہ میسج پڑھ کر ایپ بند کر دیتی، پورے ایک منٹ بعد دوبارہ بیل ہوتی، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، جب تک جواب نہیں دو گی گھر نہیں آؤں گا، اگر زندگی پیاری ہے تو گھاڑی میں ہی رہو، گھر آؤ گے تو میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گے، تمہارے ہاتھوں سے ملی موت بھی قبول ہوگی، بکواس کرنے میں تمہارا ثانی کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑی مصیبت سے بچا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری مخالف پارٹی نے میرے خلاف سازش کی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو کروڑوں کا نقصان تو ہونا ہی تھا، ساتھ ساتھ میری کاروباری ساکھ کی ماں بہن ہو جانی تھی، یہ دونوں نقصان پھر بھی قابل قبول ہوتے، مگر وہ میری ذاتی زندگی کو بھی نشانے پر رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی تو تم سے محبت کرتا ہے، پھر یہ دشمن کہاں سے آ گئے؟ یہ دشمن بھی کسی وقت کے اچھے دوست رہے ہیں، اسی لیے میرے پلس مائنس پوائنٹس جانتے ہیں۔ کیا ابھی بھی پریشان ہو؟ نہیں اب نہیں، آج ملک کی بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں اشائیہ تھا، وہاں پہ میری کمپنی کی تعریف ہوئی ہے، مجھے اس سال کے بہترین کاروباری نوجوان کا نام دیا گیا ہے، سب کے منہ بند ہو گئے ہیں۔ مجھے کیوں یہ سب بتا رہے ہو؟ تمہارا دل نرم کرنے کی کوشش میں، تو کیا میں بتاؤں کہ کوشش ناکام ہوئی ہے یا خود سے سمجھ آ گئی؟ زشمہ، میں ایک بات سوچ رہا ہوں، تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سوچ رہے ہو سوچتے جاؤ، تم میری اتنی سی غلطی معاف کرنے میں ناکام ہو رہی ہو، اگر کل کو میرا کوئی بہت بڑا گناہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ تم تو ایک پل میں مجھے دھتکار دو گی۔ زشمہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ اگلے پل ٹائپ کر رہی تھی، تم جہاں بھی ہو فوراً گھر آؤ، جو بھی بات ہوگی آمنے سامنے ہوگی، فون پہ نہیں۔ तुम्हारे सामने बैठकर बात करना मुश्किल होता है, मुझे फोन पे ही अपनी कह लेने दो। तुम आ रहे हो या मैं तुम्हें ढूंढने को बाहर निकलूं? बेहिस इंसान, पूरा एक महीना हो गया है मुझे तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखे हुए। जिसको तुम सड़ी हुई शक्ल कह रही हो, जानती हो कितनी परियों के दिल इस शक्ल को देखकर धड़कते हैं? वो नंगे पैर कमरे से निकल आई थी। इतने भरे हवेली नुमा घर में इस वक्त उसके अलावा एक मम्मी ही मौजूद थी, जो यकीनन सो रही थी। बाकी रहे नौकर तो वो अपने क्वार्टरों में महवे ख्वाब थे। फोन को कंधे और कान के दरमियान दबाकर हाथों से अपने सिल्क के गाउन की डोरियां बंद करती नीम अंधेरे में सीढ़ियां उतर रही थी। साथ ही फोन मिला दिया। छूटते ही बोली, मेरे सामने अपनी फताइयों का जिक्र मत करना। क्यों, क्या जलसी होती है? जिशमा की धड़कन थमी, मगर सिर्फ 2 सेकंड के लिए। उसके बाद वो पूरे एतमाद से कह रही थी, हाँ जलसी होती है और बहुत ज्यादा जलसी होती है। दूसरी जानिब खामोशी छा गई, फिर धीमे लहजे में बोला, मुझे भी बहुत जलसी होती है। जिशमा ने मुस्कुराते लबों से पूछा, किस से? मेरे लिए कौन आहे भरता होगा? मैं? सिशमा की हंसी बेख्तियार थी। खुद ही आंखें भरते हो और खुद ही जलस होते हो, कैसा मजाक है? मैं खुद से नहीं, उस शख्स से रकाबत महसूस करता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में ना होकर भी तुम्हारे दिल में रहता है, और एक मैं हूँ। सिशमा जहां थी वहीं रुक गई, दोनों जानिब खामोशी। हाजन? जवाब में खामोशी। इस दफा वो सख्त लहजे में बोली, हाजन अयाज। जी जिशमा। तुम्हारा रवैया मेरी समझ से बाहर है। क्या चाहते हो? मुझसे उकता गए हो? जान छुड़वाना चाहते हो तो मेरे सामने आकर मेरे मुंह पे कहो। जवाब में फिर खामोशी। कहां हो, बोलते क्यों नहीं हो? वो तेजी से बिरूनी दरवाजे की जानिब चल पड़ी। मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं खामोश ही रहूं, फिर कोई उल्टी सीधी बकवास करूंगा। घर आओ। नहीं आऊंगा। मैसेज में क्या कहा था तुमने? मैं कहूंगी तो घर आओगे। अब मैं कह रही हूँ घर आओ। मैंने सोचा था ये खेल बहुत आसान होगा, मगर नहीं, ये आसान नहीं है, इंतहाई मुश्किल है। मैं एक माह मुल्क से बाहर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे कारोबार में जो मसला हुआ वो भी इसी का नतीजा है, वरना मैं देखता किस में जरूरत है जो मुझे ब्लैकमेल करता। मगर उस औरत ने कार्ड ही वो खेला कि मैं डर गया था। किस औरत ने क्या कार्ड? मुझे कुछ बताओगे या पागल करके सुकून आएगा? जिशमा सो जाओ। इतना कहकर उसने कॉल बंद कर दी। हॉल के खुले दरवाजे में वो नंगे सर नंगे पैर खड़ी थी। गुस्से से नथने फूल रहे थे। जी यही चाह रहा था, एक दफा हाजिन सामने आए ताकि उसका मुंह तोड़कर अंदर की आग ठंडी कर सके। वो इतना रोई थी अब जिस्म का शुगर लेवल लो लग रहा था। उसने सोचे बगैर फाइज का नंबर मिलाया। दूसरी बेल पे कॉल उठा ली गई। जी हाजिन किधर है? घर के बाहर। मैं गैराज के पास खड़ी हूँ और यहाँ कोई भी नहीं है। उनकी गाड़ी गेट के बाहर सड़क पे पार्क है। क्या गाड़ी में अकेला है या साथ कोई और भी है? अकेले ही हैं भाभी, आप उनको वहीं रहने दे, आप आराम करें, कल तक नॉर्मल हो जाएंगे। जिशमा ने गुस्से से कॉल काट दी। वापस बेडरूम में जाकर जूते और दुपट्टा लेकर नीचे आई। चौकीदार ने गेट का ताला खोल दिया। गेट से निकलकर सड़क के दाएं जानिब देखा। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में एक दो गाड़ियां खड़ी नजर तो आई, मगर उनमें हाजन की गाड़ी नहीं थी। उसने गर्दन मोड़कर दूसरी जानिब देखा। वहां सिर्फ एक ही कार रुकी हुई थी। गाड़ी काफी फासले पे थी। जिशमा ने आंखें मीचकर गौर से देखा, तब ड्राइविंग सीट पे खियाला सा नजर आया। उसका दिल उस दिल को सुकून सा आ गया। चौकीदार से मुहातिब हुई, तुम दरवाजा बंद कर लो, मैं तुम्हारे साहब के पास जा रही हूँ। चौकीदार गाड़ी से देख चुका था, इसलिए अस्पात पे सर हिलाते अंदर चला गया। वो कदम कदम चलते गाड़ी तक आई। वो अपनी जगह साख्त बैठा उसको आते हुए देख रहा था। ये औरत कितनी प्यारी है, मैं फैसला नहीं कर पाता हूँ इसका दिल ज्यादा प्यारा है या इसकी सूरत ज्यादा प्यारी है। जिशमा एकदम से अंदर नहीं आई, बल्कि गाड़ी के पास आकर बिल्कुल सामने रुकी। अब आंखों में हैरत भरे यकटुक उसको देखे जा रही थी। लैंप की जर्द रोशनी में हजन का दाढ़ी बढ़ा चेहरा उसको बीमार दिखा रहा था। हैरत की जगह परेशानी ने ले ली। अगले पल वो ड्राइवर के बराबर वाली सीट संभाल चुकी थी। हासिन ने उसकी जानिब देखे बगैर गाड़ी अंदर से लॉक कर दी। जैसे ही हासिन की खुशबू जिश्मा के नथनों से टकराई, उसने मजीद गहरी सांस अंदर खींची। मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, यह हालत क्यों बनाई हुई है? वो तमस्खर उड़ाने वाले अंदाज में हल्का सा मुस्कुराया। सालिम मोहब्बत हो गई है। जिश्मा अपनी सीट में जड़ा मुड़ी और पूरी तरह हासिन की जानिब मुंह करके बैठकर लगी उसको पढ़ने। किससे हुई है? वो एक दफा फिर हंसा। नजरें अभी भी गाड़ी की तारीख पड़े स्पीड डायल पे जमी हुई थी। माथे पे दो बल नुमाया थे। एकदम गर्दन मोड़कर उसकी आंखों में सुर्ख नजरें गाड़ते हुए संजीदगी से बोला, तुमसे। जिश्मा सांस लेना भूल गई। हाजिन ने नजर हटाई। जिश्मा को जैसे गोता लगा, खांसते हुए बोली, क्या ये परेशानी वाली बात है? हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है, इसका हल क्या होगा? मैं सोच सोच कर जहनी तौर पे मफलूज हो रहा हूँ, मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा है। पहले मुझे ये था तुमसे शादी कर लूंगा, अंदर की बेचैनी खत्म हो जाएगी। कैसी बेचैनी? मुझसे वो सवाल मत पूछो जिसका जवाब तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। जिश्मा ने अपने लबों को जबान से तर किया और बेबसी से बोली, हाजिन, मुझे परेशानी हो रही है, सचमुच वाली परेशानी। आज का सारा दिन तुम्हारे रवैये की गुथियां सुलझाते गुजर रहा है, मगर मेरे हाथ कोई सिरा नहीं आ रहा है, मेरी मदद करो प्लीज। मुझे आसान और सीधे लफ्जों में बताओ क्या हुआ है। जानती हो तुम्हारा और मेरा ब्लड ग्रुप एक है। मुझे नहीं याद मैंने कभी तुम्हें अपना ब्लड ग्रुप बताया है, तुमने नहीं बताया, मगर एक दफा मैंने तुम्हें खून दिया था। जिश्मा को लगा हाजिन यकीनन पागल हो गया है। फिर एक और शक गुजरा जिसकी तस्दीक के लिए उसने हाजिन की जानिब झुककर उसको सूंघा। वो खुद तजियती से मुस्कुराया, मैं ड्रग्स पर नहीं हूं। क्या कुछ उल्टा सीधा खाया है? वो नफी करते हुए बोला, उस रात के बाद से आज तक मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए हैं। किस रात के बाद से? हाजिन ने थूक निकला, वक्त नजाह की कैफियत कैसी होती है। आज उसको बोलना था, अंदर का लावा निकालकर खुद को आजाद करना था, इसलिए कह दिया। जिस रात साथ की मौत हुई थी। जिश्मा ने ताजुब से पूछा, साथ का यहां क्या जिक्र? और साथ की मौत का तुम्हारे ड्रग्स लेने से क्या ताल्लुक? वो खामोश बैठा रहा। जिश्मा उसको देखे गई, खामोशी बोलती रही, यहां तक कि जिश्मा की आंखें फैलकर बाहर को निकल आई, नहीं। जिश्मा की सरगोशी के जवाब में हाजिन ने सर अस्पात में हिलाया। हाजिन, मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक ना करो। मेरी सारी जिंदगी मजाक बन गई है, हाजिर ने हारे हुए लहजे में कहा और सर झुका लिया। जिश्मा की समझ ना आया अब यहां इस मुकाम पे क्या कहना है, ये कहना क्या चाह रहा है। ना, ऐसा नहीं हो सकता, उसने हौसला करके पूछा, क्या हुआ था? जिश्मा की आवाज कांप रही थी। बेफिक्री की जिंदगी, पैसे का खुमार, आजादी, खुद मुख्तारी का नशा, सोने पे सुहागा, औरत की सोहबत। मैं जानवर बन गया था। उस वक्त मार्केट में कोई ऐसा नशा नहीं था, महंगे से महंगा, जो मैंने खरीद कर इस्तेमाल नहीं किया हो। औरत की सोहबत? जिश्मा की सरगोशी पे हाजिन ने पल दो पल आंखें बंद करके खुद को यहां से गायब करना चाहा, मगर उसके पास कोई मंत्र नहीं था, इसलिए आंखें खोलकर बोलने लगा, विशाल, मेरी गर्लफ्रेंड थी। जिश्मा उसका चेहरा देखे जा रही थी, जो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा था। उस दिन गाड़ी में वही मेरे साथ थी। हम लोग एक पार्टी पे जा रहे थे, मगर घर से निकलने से पहले हम दोनों ने दो दो गोलियां खाई थी। उन दिनों उन गोलियों की बड़ी धूम थी, 40,000 की एक गोली थी और मिलती भी बड़ी मुश्किल से थी। मगर चूंकि मैं एक नंबर का हरामी बना हुआ था, मेरी जेब में हर उस बंदे का नंबर था जो मुझे एक कॉल पे दुनिया का बेहतरीन नशावर मवाद मुहैया कर सकता था। दिन ईद थे, रातें शब बरातें। विशाल के बगैर एक पल नहीं गुजरता था। उसका बाप मुझसे दुगना अमीर था। मुझे विशाल की दोस्ती ने मुल्क की करीम में उठने बैठने का मौका दिया। वो खूबसूरत तो थी ही, मगर उसको तवज्जो हासिल करना भी आता था। हर रात हम पागलों की तरह पार्टी मनाते, न जाने किस चीज की खुशी में पार्टियां करते थे, मेरी समझ से बाहर है। घर पे मम्मी या बहनों को मेरी आवारा गर्दियों की खबर नहीं होती थी। मेरा इतना रौब ही बहुत था, कमाता हूँ, सबको हर चीज बिन कहे मिल रही है। उसके बाद मेरे पे किसी का कोई हक नहीं बचता कि किसी के पास वक्त गुजारूं। उस रात जो हुआ मेरी रूह को तार तार कर गया। एक आदमी ने मेरे हाथों में जान दे दी। मैं नशे में था, फिर भी मुझे वो रात नहीं भूलती। विशाल को हल्के जख्म आए थे, मगर मैं बिल्कुल महफूज रहा। गाड़ी मैं चला रहा था, साथ की गाड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुई। मेरी गाड़ी को मामूली से खराशें आई और तुम्हारी सांसें तो चल रही थी, मगर सर से बहने वाले खून ने तुम्हारा सारा चेहरा तर किया हुआ था। जिशमा का कामता हुआ हाथ उसके बाजू पे रुका। हसन खामोश हो गया, उसने अपने हाथों से चेहरा रगड़ा जैसे अपने चेहरे पे रकम हर तहरीर मिटाना चाह रहा हो। मिशाल वहां रुकना नहीं चाहती थी, उसने मुझे भी अपने साथ खेंचा। मिनते की आखिर तंग आकर गालियां देती वहां से चली गई। मैं नहीं जा सका। सुनसान सड़क पे एक मुर्दा लड़का और एक नीम मुर्दा लड़की की मौजूदगी मेरे अंदर के जानवर को खा गई। ये सब मेरी वजह से हुआ था और मैं कुछ भी कर लेता, वक्त को नहीं मोड़ सकता था। एक वैन को रोककर अस्पताल जाने पर राजी किया, इस कोशिश में कि शायद लड़की की जान बच जाए। मैं और फायज अगले 3 दिन तक उस अस्पताल में रहे थे। हम लोग सामने नहीं आए, हमें हमारा पैसा बचा गया। मेरे गुनाह का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, बल्कि मुझे हीरो समझकर मुझ तक शुक्रिया का पैगाम भिजवाया गया, क्योंकि न सिर्फ तुम्हारी जान बचाई थी बल्कि खून भी दिया था। जिशमा ने अपनी जानिब का लॉक खोला, हिम्मत जवाब दे गई थी। डबडबाई आंखों के साथ दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी थी जब हाजिर ने खींचकर वापस बिठाया और दरवाजा लॉक कर दिया। जिशमा, भागना नहीं है, न तुमने न मैंने, क्योंकि मैं भाग भाग कर थक गया हूं। जिशमा ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींचकर हथेली की पुश्त से अपने लड़क आने वाले आंसू साफ किए। शादी क्यों की? जिशमा की भराई हुई आवाज हसन के दिल को चीर कर गई। तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज करने के लिए। कफारा? नहीं, कफारा करना मुमकिन ना था। मेरे हाथों तुम्हारे शोहर का कत्ल हुआ था, कफारा कैसे करता? जिस दिन तुम अहमद के ऑफिस में नजर आई, मेरा एहसास जुर्म जीने नहीं देता था। अगर वो जिंदा होता, तुम नौकरियां ना ढूंढ रही होती। तुम्हें नौकरी दिलवाकर सोचा शायद अब अंदर की आग पे कोई ठंडक पड़े, मगर नहीं। हर रोज दिल ये कहता कि मैं तुम्हारे सामने जाकर तुम्हें सारे सच से वाकिफ करके बोलूं कि मुझे सजा दो, मगर मैंने फाइस को सख्ती से मना किया हुआ था। वो मुझे ऐसे किसी स्टंट से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मम्मी ने जब फोन पे कहा मेरे लिए लड़की पसंद कर चुकी है, साथ बताया कि लड़की बेवा है, उस पल मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा आया था। अगर बेवा से शादी करनी है तो उससे क्यों ना कर लो। मेरी माँ को तुम पसंद आई जिशमा, मैंने दिल से रजामंदी ही नहीं दी बल्कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मुतासिर करने के लिए एक बिजनेसमैन के दिमाग से सारी सूरत हाल का सामना किया। शादी करके मुझे ये था तुम्हें एक अच्छे मुस्तकबिल में मसरूफ देखकर मेरा एहसास जुर्म खत्म हो जाएगा और मैं वापस नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगूंगा। पर इधर भी मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। मुझे अब दोहरा गम खाता है, एक तुमसे झूठ बोलकर शादी की और दूसरा तुमसे मोहब्बत कर बैठा। यकीन मानो मोहब्बत मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी। जिशमा बोली तो आवाज संजीदा और हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। तुमने कहा तुमसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी। मुंह से इनकार करने के बावजूद मैं पागल अंदर ही अंदर तुम्हारी बात पे यकीन भी कर गई। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मेरी बारी है कि कुछ पर्दे तुम्हारी आंखों से भी हटा दूं। साद की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। हाजन ने पहली दफा गर्दन मोड़कर पूरी तवज्जो से उसको देखा। अब की बार वो बिल्कुल सपाट चेहरा लिए सामने देखते हुए तेज तेज बोल रही थी, एक्सीडेंट की वजह हार्ट अटैक है। हम लोग दूसरी लाइन में थे। साद के सीने और बाजू में यकदम दर्द उठा था। मेरी सारी तवज्जो उसकी तरफ चली गई। साद के स्टीयरिंग व्हील से हाथ हट गए। इससे पहले मैं कुछ करती, गाड़ी एक दरख्त से टकराने के बाद दूसरी लाइन की एक गाड़ी से टकरा गई थी, जिसके बाद मेरा दिमाग अंधेरे में चला गया था। इम्पॉसिबल। यासिर भाई ने साद का पोस्टमार्टम करवाया था, जिसकी रिपोर्ट में साद की मौत की असल वजह हरकत कल्ब का बंद होना है। तुमने साद को नहीं मारा है, इसलिए आज के बाद ये सोचकर परेशान होना छोड़ दो कि तुमने किसी का कत्ल किया है। अपनी दुनिया में लौटकर अयाशी मारो। वो पलक झपकाए बगैर उसको देखे जा रहा था। तुम्हारा मसला तो हल हो गया हाजन, अब मेरी मदद करो। वो उसके हाथ अपने गिरफ्त में लेते हुए खतरनाक संजीदगी से पूछने लगा, कहीं ये सब मुझे बहलाने के लिए मनगढ़ंत तो नहीं है? इस वक्त मुझे तुमसे शदीद किस्म की नफरत महसूस हो रही है हाजन, इसलिए नहीं। मुझे तुमको बहलाने का कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारी खातिर झूठ का सहारा लूं। मैं यासिर भाई से साद की रिपोर्ट लेकर भेज दूंगी, गौर से पढ़ लेना। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर हाजन की गिरफ्त मजबूत थी। इस फिक्र का क्या मतलब लूं, यासिर भाई से लेकर भेज दूंगी, यासिर भाई से लेकर आऊंगी, क्यों नहीं कहा? जिशमा पूरी नफरत से उसकी आंखों में देखते हुए फुनकारी, मेरा तुम्हारे साथ कोई मुस्तकबिल नहीं है। एहसास जुर्म खत्म हो तो एहसास जुर्म की वजह से बांधे गए बंधन भी खत्म होने चाहिए। सिंपल इज दैट मिस्टर बिजनेसमैन, अब हाथ छोड़ो मेरे। तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो, वो जैसे शौक में बोल रहा था। हाजन हाथ छोड़ो। हाजन ने उसके हाथ छोड़ दिए। जिशमा का हाथ लॉक की जानिब गया मगर लॉक नहीं खुला। गाड़ी का लॉक खोलो। क्या तुम गुस्से में आ गई हो? मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना, लॉक खोलो। मुझे एक पल भी तुम्हारे साथ इस गाड़ी में नहीं बैठना। क्या दूसरी कार लाऊं? जिशमा ने बुरी तरह घूरा मगर हाजिन पे उसका उल्टा असर हुआ। एक तरफ मुझे टेंशन फ्री कर दिया है, दूसरी तरफ नाराजगी दिखाकर फिर से टेंशन में मुब्तला कर रही हो। गुस्सा तुम पे बिल्कुल नहीं जचता। अब तुम्हारी मिसाल किधर है? अगर वो गर्लफ्रेंड थी तो शादी उसके साथ क्यों नहीं की? आउच, तुम जेलस हो रही हो? जिशमा ने रख के उसके कंधे पे एक थप्पड़ मारा। मेरी जान पे बन आई है फजूल आदमी, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कसम ले लो जो मजाक किया हो, मुझे तुम्हारी फजूल की गुफ्तगू से कोई सरोकार नहीं है। मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दो, शादी मिशाल से क्यों नहीं की? ये सवाल तुम्हें मेरी मम्मी से करना चाहिए। देखो मैं तो एक फरमाबरदार बेटा हूँ, जिधर मेरी वालदा ने कहा मैंने चुपचाप निकाह कर लिया। और हंसी होकर चीखी थी, हसन इतने प्यार से मत बुलाओ, मेरे दिल को कुछ होता है। अगर तुमने गाड़ी का लॉक नहीं खोला तो मैं मम्मी को फोन करके बता दूंगी कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हाजिन ने कुछ देर संजीदगी से सामने गेट को देखा, फिर मासूमियत से बोला, क्या मम्मी को बताना जरूरी है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ, क्योंकि वो तो मेरी कसूरवार नहीं है। अभी तुमने खुद कहा है मैं भी तुम्हारा कसूरवार नहीं हूँ, फिर मुझे क्यों छोड़ना चाह रही हो? जिशमा ने उसकी आंखों में देखते हुए बोलना शुरू किया, तुम किस मुंह से ये कह रहे हो कि तुम मेरे को सूरवार नहीं हो? ये बात कहते तुम्हें शर्म ना आई? जिस दिन हमारी मंगनी हुई थी याद है, उस दिन मैंने तुम्हें पूछा था मैं ही क्यों? तब मुझे सच क्यों ना बताया, क्यों झूठ बोला? हाजिन के जहन से बोझ हट गया था, वो मजाज और मजाज की शोखी पूरे अरूज पे थी। उस रात हमारी मैसेज पे बात हुई थी, मुझे नींद आ रही थी और हाँ, और नींद में तुमने झूठ मारकर जान छुड़वाई। ना, ऐसा नहीं है, मैंने जो कुछ भी कहा हर्फ हर्फ सच कहा। तुम क्यों नहीं? जो साथ के लिए अभी तक रोती है, उसको मुझसे मोहब्बत हो गई तो मेरे लिए भी ऐसे ही रोएगी। मैं साथ के लिए नहीं रोती हूँ, जिस दिन से तुम्हारे निकाह में आई हूँ मैं उसके लिए एक दफा भी नहीं रोई। देखा हसन अयाज, मैं तुम्हारे जैसी धोखेबाज नहीं हूँ। मैं कैसे धोखेबाज हुआ? अपने तौर पे तुमने यही सोचकर शादी की है कि साथ की बेवा का मुस्तकबिल महफूज करके खुद को एहसास जुर्म से निकाल लूं। तुम्हारी शादी किसी और से करवा कर भी एहसास जुर्म से निकल सकता था, क्या जरूरी था कि खुद ही शादी करता? बगैर सोचे समझे जशमा ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। हाजन की आंखों में मार दो या मर जाओ वाला जज्बा जागता देखकर जशमा ने अपना हाथ मसला जिसमें चूंटियां दौड़ रही थी, गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। घड़ी में गहरी खामोशी छा गई, जिसे तोड़ते हुए वो बोला, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, शादी की है निभाने के लिए, भागने के लिए नहीं। हाजिन की सरगोशियों पे वो धाड़ी, इसीलिए पिछले एक माह से भगोड़े हुए हो? वो मैं डर गया था, सच जानने के बाद मुझे छोड़ने की बात करोगी और अगर अपनी धमकी के मुताबिक विशाल खुद तुम्हारे पास आकर सच बता गई तब तो अपना केस लड़ने के काबिल भी नहीं बचूंगा। हाँ, अब तो जैसे मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी। तुम्हें क्या बुरा लगा विशाल? हाँ वो भी, और क्या? मुझसे शादी हमदर्दी में की है, चाहत में नहीं, और मुझे हमदर्दी में मिली भीख नहीं चाहिए। वही तो बकवास कर रहा हूँ, जो ताल्लुक हमदर्दी में कायम किया था वो हमदर्दी नहीं रहा, जान का वबाल बन गया है क्योंकि इसमें मोहब्बत आ गई है। इतना ही जान का वबाल है तो तोड़ दो ना, जान सुकून में आ जाएगी। एक काम की बात बता रहा हूँ, पल्ले से बांध रखना, अगर सारी उम्र सिर्फ हमदर्दी निभानी पड़ती तब भी ये शादी कामयाब बनानी थी, अब तो नाकामी का चांस ही नहीं रहा। सारे फैसले सारे दावे एक तरफा ही किए, जो मेरी चाहत कहाँ जाएगी? हाजिन ने चैलेंज करती नजरों से देखते हुए पुरयकीन लहजे में पूछा, तुम्हारी चाहत अगर मेरे सिवा कोई है तो बताओ। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरा जवाब इसके उलट ना होगा? अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सच ना होता तो तुम्हारा रद्द अमल इतना सख्त ना होता। जहाँ चिंगाड़ी हो आग वहीं भड़कती है। विशाल कभी अहम हुआ करती थी, अब तो वो गुजरे कल की एक गलती के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सल्तनत में तुम्हारा कोई शरीक नहीं है। कल कैसा वक्त आता है मैं नहीं जानता हूँ, जैसे गुजरे हुए कल में ये सोचना भी महाल था कि एक दिन आधी रात को अपने घर के बाहर बैठकर यूं जिशमा नामी हातून को मना रहा होऊंगा और वो इस कदर अहम होगी कि अगर छोड़कर जाने की बात भी करे तो दिल बेचैन हो जाए। जिंदगी में आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, आज ये मिसाल सच साबित हो गई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कल को कोई और जिशमा मिल गई तो मेरी जगह वो सफाइयां सुन रही होगी। हाजिन धीरे से हंसा, आने वाले कल का नहीं जानता हूँ, पर ये दुआ हमेशा करता रहूंगा कि अल्लाह पाक मेरे हर कल में सिर्फ तुम्हें मेरा साथी बनाए। अगर किसी को सफाइयां दूं तो सिर्फ तुम्हें। अब क्या ख्याल है, हम माजी को इधर ही छोड़कर मुस्तकबिल की खोज में घर चले? क्या सोचने का वक्त नहीं मिल सकता? क्यों नहीं, मैं गाड़ी गेट तक लेकर जाता हूँ, तब तक तुम सोच लो। कहते साथ ही उसने चाबी घुमाई, गाड़ी का इंजन मधर से सुर के साथ जिंदा हो गया। हाजिन ने गाड़ी के लॉक खोल दिए, चंद सेकंड बाद गाड़ी गेट के सामने रुकी, हॉर्न दिया, उधर चौकीदार ने गेट खोला, उधर वो गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। हाजिन शौक के आलम में उसे देखे गया जो वापसी की तरफ जाती लंबी सड़क को देखी गई और गहरी सांस भरते हुए मुड़कर हाजिन की जानेब एक जानदार मुस्कुराहट उछालती गेट से अंदर चली गई। हासन ने अपने दिल पे हाथ रखकर खुद को यकीन दिलवाया, आंचल में जलता दिया हर खुशी जलाने वाला दिया नहीं साबित हुआ था, बल्कि ऐसा चिराग निकला जिसने दिलो जान रोशन कर दिए थे। हमारी कैसी ईद, मेरी बच्ची की अभी तक मैचिंग चूड़ियां ही नहीं आई हैं। दादो अच्छी, बब्बा नंदे, मम्मा नंदी, तहमीना ने हंसते हुए अपनी 3 साल पोती के चेहरे को चूम डाला। बब्बा तो चलो गंदा है, बात समझ में आती है, पर मम्मा को क्यों गंदा बोला, वो तो तुम्हारे काम करती है, तुम्हारा बाप उसको कम तंग तो नहीं करता, एक टांग पे भाग रही होती है, फिर भी तुम बाप बेटी के शिकवे खत्म नहीं होते। मम्मा नंदी है। अच्छा अभी तो जाकर बाबा को उठाकर साथ लाओ, बोलो पुप्पो कह रही है उठ जाओ, चांद रात हो गई है, कब तक सोते रहोगे। बुबो चांद रात कहाँ होती है। मेरी जान ईद की रात चांद रात होती है, नया चांद नजर आता है। बब्बा को लाती हूँ। हाँ लाओ। नीले रंग के नेट के फ्रॉक में जब वो तेज भागती कमरे से निकली तो कंधे पे गिरे हल्के कर्ली बाल साथ साथ डांस करते जा रहे थे। तहमीना बोले, 3 बजे सोया था, अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई होनी, पर हुरमैन उसको साथ लिए बगैर नहीं आएगी। तानिया हंसते हुए बोली, इसलिए तो हुरमैन को भेजा, आखिर लोहे को लोहा ही काटता है। तहमीना भी मुस्कुरा दी, क्योंकि तानिया जो कह रही थी वो बात थी तो सच ही। दरवाजा नीमवा था जिसे धक्का देकर चौपट खोलती अंदर दाखिल हुई। स्विच बोर्ड के नीचे पड़ी कुर्सी पे चढ़ते हुए 1-1.5 मिनट जाया हो गया, मगर वो धुन की पक्की थी। सांस तब ही लिया जब कुर्सी पे चढ़कर बत्ती जलाई, फौरन कुर्सी से नीचे उतरी और बाप के सरहाने खड़ी होकर पूरे जोर से चीखी। चादर में छुपे वजूद के हाथ बरामद हुए, जिन्होंने टटोल कर हुरमैन के बाजुओं का तायुन किया, फिर वहीं से पकड़कर उठाया और बेड पे अपने बराबर बिठा दिया। ये रूटीन का काम था। 2 सेकंड बाद कमरे में दोबारा से हल्के हल्के हर्राटे गूंजने लगे। हुरमैन के मिजाज पे वो हर्राटे इंतहाई भारी गुजरे, जिसका हर्जाना हासन को भरना पड़ा। जहां उसके चेहरे से चादर हटी हुई थी, ऐन वही हुरमैन ने रख कर थप्पड़ मारा। बब्बा नंदे, मेरी माँ, यो सोते में मत मारा करो, कहीं किसी दिन तुम्हें उठाकर दीवार में मार दिया तो फिर। वो नींद से भरी सुर्ख आंखें बेटी पे गाड़े कह रहा था। उसकी इतनी तकरीर के जवाब में मुंह बनाते हुए बोली, बब्बा नंदे। जिस तरह वो नाक चढ़ाकर उसको घूर रही थी, खासन के लिए मुस्कुराहट दुबाना मुश्किल हो गया। क्यों उठाया है। और मीम की चूनिया लाओ। क्या लाऊं, चूनिया है, वो क्या होता है, चॉकलेट है। हुरमैन ने माथे पे हाथ रखा। कमरे में आती जिश्मा ने ये मंजर देखा, हासिन बेचारगी से पूछने लगा, ये क्या कह रही है, इसकी चूड़ियां आने वाली हैं, पहले मम्मी के पीछे पड़ी हुई थी, अब तुम्हारे पास आ गई है। आ गई है या भेजी गई है। 1 मिनट, तुम इतनी तैयार क्यों हुई हो, क्या कोई मेहमान आए है। जिश्मा ने नफी में सर हिलाया और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई, क्योंकि दोनों हाथों में कपड़ों से भरे हैंगर्स उठा रखे थे। कि तुम्हारी मम्मी किधर जा रही है। मामा घर। ओह, हमारे बगैर जाएगी, क्यों। मम्मा नंदी है, बब्बा नंदा है। शहजादी जी, मैं 4 बहनों का अकलौता भाई हूँ और आज तक मेरी बहनों ने मुझसे यूं बाजारों के चक्कर नहीं लगवाए जैसे तुम मुझसे काम लेती हो, और रहता मैं तब भी गंदे का गंदा हूँ, थोड़ी सी तरक्की ही दे दो। चलो बब्बा, चूनिया। तुम्हारी कोई उम्र है चूड़ियां पहनने की। बब्बा नंदे, हुरमैन बब्बा नहीं कहते, कितनी दफा कहा है, बाबा कहते हैं। जिश्मा के टोकने पे वो नाक चढ़ाते हुए बोली, बाबा नहीं, बब्बा बोलते हैं। कैसी बब्बा की बेटी हो, सोने तक नहीं देती हो, सारी अपनी माँ पे गई हो। खाजिन के कहने पर जिश्मा ने मुलामती नजरों से नवाजा, हाँ मैं तो तुमसे घर के काम करवाती हूँ। घर के करवाओ या अपने जाती काम करवाओ, बात तो एक ही है। शर्म तो नहीं आती बच्ची के सामने यूं फिजूल गोई करते हुए, तभी वो तुम्हें गंदा कहती है। अच्छा तो तुम्हें क्या कहती है। अच्छी मामा है ना हुरमैन। मामा अच्छी है, اور مین نے ہر لحاظ بلائے طاق رکھ کر نفی میں گردن ہلائی. حاضر نے چڑانے والی مسکراہٹ اچھالی. اب تو یقین ہو گیا ہوگا جو میں کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں. تم اپنی چارمنگ مسکراہٹ دکھا کر جو حاصل کرنا چاہ رہے ہو میں سب سمجھتی ہوں. پچھلی دفعہ تم نے کہا تھا تم آئندہ کبھی رات بھر گھر سے باہر نہیں رہو گے, پر تم کیسے بدل سکتے ہو؟ وہ اپنی بات پوری کیے بغیر باہر کا رخ کر رہی تھی جب حسن کے دماغ نے کام کیا. وہ ایک ہی جست میں بیڈ سے اتر کر اس کے برابر پہنچ چکا تھا. مجھے تمہاری یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب مجھ سے لڑنا ہوتا ہے اس وقت ٹپ ٹاپ تیار کیوں ملتی ہو تاکہ لڑائی کر کے اپنے بھائی کی طرف چلی جاؤں. مجھے باتوں میں مت لگاؤ, مجھے تمہاری تصویریں ملی ہیں جہاں اس چڑیل کے ساتھ ڈنر کر رہے ہو. حازن کے تاثرات ایک دم بدل گئے. زشما کا بازو چھوڑ دیا, مڑ کر بیڈ پر بیٹھی خرمین کو گود میں لیا اور کمرے سے نکل گیا. خرمینی, دادو کو بولو تیار ہو, میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں, پھر چوڑیاں لینے چلتے ہیں. یاہو ببا چوڑیاں. جی چوڑیاں پیارے ببا. خرمین نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر منہ چوما اور اس کی گود سے اتر کر دادی کی تیاری کروانے بھاگ گئی. حازن بیٹی کو جاتا دیکھتا رہا. جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی پھر کمرے میں مڑا, دروازہ بند کیا اور زشما پہ نظروں کا فوکس کیا. چہرے پہ دنیا بھر کی سنجیدگی تھی. تصویریں کس نے بھیجی؟ فائز کا نام مت لینا کیونکہ مجھے علم ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا. واٹس ایپ پہ گروپ میں کسی نے بھیجی تھی, مجھے اس کسی کا نام چاہیے. کیا کرو گے, جا کر لڑو گے کہ میری بیوی تک میری سرگرمیوں کی خبر کیوں پہنچائی گئی ہے؟ جب وہ آدھی رات تک میرے انتظار میں بیٹھی نیند بھگا رہی تھی تب میں اپنی سابقہ مشوقہ کے ساتھ مزے کر رہا تھا. یو بیٹر واچ یور ٹنگ ڈیئر وائف, یہ بات اگر تمہاری بجائے کسی اور نے کہی ہوتی میں اس کی زبان کاٹ دیتا. اور مجھے اس بات کا بے انتہا دکھ ہوا ہے کہ یہ الزام لگانے والی تم ہو. کیا ایک انسان کو جاننے کے لیے 4 سال کم ہوتے ہیں؟ تم سے بہتر کسی کو علم نہیں ہے کہ اگر کبھی راتوں کو باہر رہتا ہوں تو صرف اور صرف کاروباری نوعیت کی میٹنگز ہوتی ہیں. یہ جس گھر میں تم سب رہ رہے ہو اور جس قسم کا عالی شان لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہو یہ سب ممکن ہی تب ہوتا ہے اگر گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں تو. میں جانتا ہوں میرا رات بھر باہر رکنا تمہیں اچھا نہیں لگتا. میں یہ بھی جانتا ہوں جب تک گھر نہ آ جاؤں تمہیں سکون نہیں آتا. اس لیے میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے 8 بجے سے پہلے گھر پہ موجود ہوں. کبھی کبھار ایسا ممکن نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی عورت کے ساتھ کہیں بیٹھ کر چھک مار رہا ہوں. اب یہ بھولی سی صورت بنا کر میرے سامنے ٹسوے مت بہانا ورنہ ایک رکھ دوں گا. اتنے سیریس کیوں ہو گئے ہو؟ میں تو بس کل رات کا غصہ نکالتے ہوئے تھوڑا اوور ہو گئی. ہٹو سامنے سے, مجھے تیار ہونا ہے. ایسے کیسے ہٹوں, پہلے لڑائی معاف کرو. سشما, حازن کی نظروں میں غصہ ناچ رہا تھا. وہ جان گئی تھی بہت غلط بٹن دبا گئی ہے مگر اب جیسے بھی پر اس آدمی کو منا کر ہی سکون آنا تھا. اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے قریب آئی, ہاتھ بڑھا کر حازن کا چہرہ چھونا چاہا. حازن نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگا. وہ پھر سامنے آ گئی. تم جانتے تو ہو تم میرا بڑا ہی قیمتی خزانہ ہو اور وہ عورت ہر اس گیدرنگ میں جان بوجھ کر شامل ہوتی ہے جہاں تمہاری آمد کے امکان ہو. جانتے ہو گروپ میں عورتیں کہہ رہی تھی مشال دن رات پچھتاتی ہے کہ اس نے حسن کو کھو دیا ہے. مشال کو زشما سے انتہا کی نفرت ہے, وہ سرعام کہتی ہے. جس وقت زشما ان کی زندگی میں آئی عین اسی پل مشان اور حازن کے راستے جدا ہوئے. عین اسی وقت اسی پل اس نے اپنا عاشق کھو دیا. وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اس لیے میں ڈرتی ہوں. ایک عورت اگر خود کو پیش کرے تو کوئی مرد کب تک نظر پھیر سکتا ہے, کب تک متوجہ نہ ہوگا؟ کیا ہوگا اگر ایک دن یوں ہی اچانک تمہارا دل بدل گیا؟ پھر میں کیا کروں گی, کہاں تمہیں ڈھونڈوں گی؟ میں تم پہ شک نہیں کرتی ہوں حازن ایاز, پر پورے وقت سے ڈرتی ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے ایک مرد تم سے پہلے میری زندگی میں آیا تھا, چلا گیا, کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کی موجودگی کے اثرات میری زندگی میں گہرے نہیں تھے, صرف ایک نام کا حوالہ تھا. تم میری روح ہو, میں تم میں جیتی ہوں, تم میری بچی کے باپ ہو. سن رہے ہو؟ وہ عورت سب کو کہتی ہے کہ ایک دن وہ تمہیں واپس جیت لے گی. زشما کی کامتی انگلیوں کی گرفت میں حسن کا دامن تھا. آنکھوں میں आंसू फैले हुए थे, नजर मिलाने से कतरा रही थी। हाजिन का गुस्सा झाग की तरह वहीं बैठ गया। पहले उसकी कामती उंगलियों को अपने हाथों में लिया, हल्के से प्रेशर के साथ उसके हाथ दबाता रहा, यहाँ तक कि कपकपाहट तकरीबन खत्म हो गई। फिर सीधे हाथ से जिशमा के गालों पे फैली नमी समेटी। मुझ तक भी ये बातें पहुंची है, मैं अब तक सिर्फ इसलिए खामोश था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ABCD इंसान उठकर मेरे लिए जो भी कहता फिरे, वो अपने बाप की कंपनी चला रही है, बिजनेस अच्छा है, बहुत पुरानी फर्म है, इसलिए हमने सिर्फ बिजनेस के इंटरेस्ट को देखते हुए उन लोगों के साथ दो प्रोजेक्ट फाइनल किए थे, एक पिछले साल और एक इस साल। मेरा कारोबार जितना भी अच्छा चले, अगर मेरी फैमिली किसी तरह से भी सफर कर रही हो तो मेरी मेहनत का क्या फायदा, खासकर जिस औरत को सारी उम्र अपनी नजरों के सामने खुशबाश हंसता खेलता देखना चाहता हूँ, अगर वो यूं परेशान रहेगी तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान का क्या है, कभी भी भटक सकता है, मगर तुम मेरे लिए दुआ करती रहोगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। और मेरी बेटी तो आज ही इतने भारी थप्पड़ मारती है, इधर मेरे गाल पे अभी तक जलन हो रही है। जिशमा के लब फैले, सर उसके धड़कते सेहतमंद सीने पे रखते हुए बोली, तुम्हारा अपना कसूर है, तुम ही ने उसको इतना फ्री किया हुआ है। हाजिन मुस्कुराया, अब तो परेशान नहीं हो? जिशमा ने जवाब ना दिया बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम नहीं जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, मैंने शादी के 4 माह बाद ही तुमसे इजहारे मोहब्बत किया था और आज तक अमल कर रहा हूँ, फिर भी पूछ रही हो? शादी को अरसा हो गया, मुझे अब दोबारा से इजहार चाहिए। वो मुस्कुराया, अभी चाहिए? हाँ अभी चाहिए, और जुबानी इजहार चाहिए। अच्छा चलो यूं ही सही, एक फोन कॉल की इजाजत मिल सकती है? वो जिशमा के जवाब से पहले ही बेड साइड पे रखा अपना मोबाइल उठा चुका था, डायरेक्टरी में सबसे पहला नंबर मिलाया। चौथी बेल पे जवाब मौसूल हुआ, जिशमा बेड ठीक करने में लग गई थी। हाजन ने उसका हाथ पकड़कर बेड पे बैठने का इशारा किया और फोन का स्पीकर ऑन किया। फाइज जी सर, मेरे वकील को बोलो वो विशाल गनी की एंटरप्राइजर को लिख दे कि आज की तारीख से मैं उन लोगों के साथ किए अपने तमाम कारोबारी मामले खत्म कर रहा हूँ, मुआवजे से फिरने का जो भी हट जाना होगा वो मैं देने को तैयार हूँ। सर ये आप क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा फैसला इतनी अचानक? सर लाखों छोड़ करोड़ों का नुकसान है, फायदा ज्यादा है, मुझे ऐसे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उनको लिख दो दोगली औरत के साथ मजीद कोई डील नहीं होगी। अब ज्यादा सवालों जवाब ना करो, मुझे अपनी खुरमैन को चूड़ियां दिलवाने जाना है। उसने फोन बंद करते हुए फखरिया नजरों से जिशमा को देखा जो हैरान बैठी थी। ये क्या हरकत की है, अपना इतना सरमाया क्यों डबो रहे हो? चैप्टर क्लोज्ड, नो मोर आर्ग्यूमेंट। और जहां तक इजहारे मोहब्बत है, मैं हर रोज ना भी कहूँ तो तुम ये यकीन लेकर घुमा करो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कितनी करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये सब फजूल है, बस अहम है तो ये कि मोहब्बत करता हूँ। दरवाजे पे नन्हे हाथों की दस्तक शुरू हो गई थी और वो फौरन से दरवाजा खोलने को आगे बढ़ा। आखिर दूसरी जानिब उसकी बेटी थी जिसको ईद की चूड़ियां दरकार थी और वो उसकी हर नन्ही ख्वाहिश को मोहतरम जानता था। So viewers, this was the end of the Neelam Riyasat's novel Aangan Mein Jalta Diya. So please, please, please viewers, listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for more updates. Please, please, please viewers, listeners, please subscribe my channel and encourage my efforts. Thank you.